स्थिति का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी कहा गया कि हम ये प्रार्थना करें कि ईश्वर उनको और भी दीर्घायु करे इस देश की सेवा करने के लिए। इसमें से 50% मैं मानता हूँ ईश्वर उन्हें दीर्घायु करें, इतनी प्रार्थना मैं अपनी तरफ से भी करता हूँ, क्योंकि इस देश की सेवा के लिए नहीं सिर्फ जीने के लिए। काफी सेवा हुई इस देश की कर चुके हैं, जेपी की दीर्घायु की कामना इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए कि वो आखिरी दिन तक इस देश की सेवा करते रहें। मेरी 60 साल की सार्वजनिक कार्य की अनुभव के बाद ये धारणा बन गई है कि हमारे देश का आदमी अपने जीवन का की पोटली किसी खूंटी पर दान देना चाहता है और स्वयं मुक्त रहना चाहता है। इमरजेंसी के वक्त भी हमने यही किया और अंत तक यही करते रहेंगे तो हमारे देश की कोई समस्या समस्या हल नहीं होने वाली है। मैं 1920 से गांधी के आंदोलन में, विनोबा के आंदोलन में, जेपी के आंदोलन में शामिल हुआ और अब तक का मेरा अनुभव यह है कि पॉलिटिशियंस के सिवा कोई एक्टिव नहीं है। जब तक हम अपने जीवन की जिम्मेवारी सारी की सारी राजनीतिक पुरुषों को सौंपेंगे देश कहीं पहुंचने वाला नहीं। तो हम जेपी को अगर सुख से जिलाना हो तो पहला काम यह होना चाहिए कि नागरिक जिम्मेवारी उठाएं, जिसके लिए उन्होंने इतने कष्ट किए और इतनी वेदनाएं सही और आज भी इस लोक प्रेम के लोक निष्ठा के कारण ही वो जी रहे हैं। चिंतामणराव देशमुख ने एक दफा कहा था कि ही इज द कॉन्शियंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इस देश के लोगों का आत्मा है जेपी। लेकिन जेपी आत्मा है तो हमने जैसे अध्यात्म में आत्मा को अपने से अलग माना और ये माना कि आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है तो ठीक ही है, शरीर की हम चिंता करें, उस तरह से हमने अपने को बचा लिया
और जो नेता रहा उसकी पूजा इसलिए करते रहे कि वो अधिक से अधिक कष्ट सहता चला जाए। इस देश का कम से कम पिछले 60 वर्षों का इतिहास मैं देख रहा हूं, इसका मैं साक्षी हूं। इसका परिणाम यह है कि आज जेपी का जन्मदिन है, मुंबई में कितनी जगह कितने लोग इसको मना रहे हैं। मुझे याद है 1922 और 1930 के बीच हम 2 अक्टूबर मनाते थे, तो नागपुर में मैं काफी लोकप्रिय था। तो एक दिन 2 अक्टूबर की सभा में कुल 13 आदमी थे और अखबारों ने बोल्ड टाइप में लिखा कि आचार्य दादा धर्माधिकारी का भाषण हुआ और उसमें 13 आदमी मौजूद थे। ये चित्र है हमारे देश का, इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और अब होश संभालने की जरूरत है। अगर आप अब होश नहीं संभालेंगे तो मैं आपसे ये बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अब हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं। या तो तानाशाही आएगी, और इंदिरा जी की तानाशाही ठहर नहीं सकेगी। अब तानाशाही आएगी तो सेना की आएगी, और हमारे देश की सेना में एकात्मता नहीं। हमको संविधान में फंडामेंटल राइट्स में कृपाण को रखना पड़ा, इसलिए कि सिख लोकनिष्ठ रहे। तो सेना की भी अगर यह हालत है तो जो लोग यह मानते हैं कि दानाशाही से लोगों की भलाई हो सकती है तो बहुत बड़े भ्रम में। हमारे देश के लिए लोकशाही, लोकतंत्र के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, और इस लोकतंत्र से लोग कुछ नाराज से मालूम हो रहे हैं। इस परिस्थिति में क्या इस देश का तरुण करना चाहता है, ये वो अपने से पूछे। मैं कोई जवाब नहीं चाहता। वो सोचे कि वो क्या करना चाहता है, क्या देश को सेना को सौंपना चाहता है, क्या पॉलिटिशियंस को सौंपना चाहता है जिनको रोज कोसता है। पॉलिटिशियंस को रोज कोसता भी है, और उनके सिवा इसके पास कोई दूसरा आदमी भी नहीं। आज क्या चित्र हमारे सामने है, जनता पार्टी में झगड़ा हो रहा है, इसका मुझे कुछ भी मेरे मुझ पर परिणाम नहीं। कांग्रेस के पिछले 80-90 साल के इतिहास में क्या कम झगड़े कांग्रेस में हुए। कांग्रेस कई बार टूटी, सूरत में टूटी, उसके बाद फिर 1917 में टूटी, 17-18 में। कांग्रेस में इस तरह के झगड़े कई बार होते रहे, लेकिन वो उस संस्था में से प्राण समाप्त नहीं हुआ। आज हमारे सामने जनता पार्टी है, उसका कोई विकल्प नहीं। जेपी की भूमिका में अपने को रखिए। एक आदमी जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, कार्लाइल के पुस्तक है हीरो एंड हीरो वर्ष, उसमें एक हीरो का वर्णन किया है मैन विद ए वर्ड, कोई एक शब्द लेकर आता है एक महापुरुष और उस शब्द के आधार पर काम कर लेता है। गांधी सत्याग्रह लेकर आया, लोकमान्य तिलक स्वराज्य लेकर आए, जयप्रकाश से पहले भूदान लेकर विनोबा आए और अब संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश कह रहे हैं। लेकिन जयप्रकाश के आंदोलन में भारतवर्ष के कई हिस्सों में मैं घूमा, भीड़ बहुत होती थी लेकिन साधारण नागरिक कोई आगे नहीं आया। ये सर्वोदय के कार्यकर्ता कुछ आए लेकिन ये तो कोई फर्स्ट क्लास नागरिक नहीं थे, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास। तो ये हम लोग इसमें आए, इसमें कोई ऐसा नागरिकत्व आया ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक तरह से हमारा तो ये पेशा ही था लेकिन कोई नागरिक, जिम्मेवार नागरिक सामने नहीं आया। सारी संस्थाओं में देख रहा हूं, कुछ गिने चुने आदमी हैं, उनके सिवा नागरिक को कोई फिक्र ही नहीं है। उसने जिम्मेवारी भगवान को सौंप दी है और सरकार को सौंप दी है। जितने आंदोलन होते हैं सिर्फ सरकार को बदलने के ही होते हैं। अब सरकार को बदलने से इस देश का कोई समस्या हल होने वाली है? दो बैल जोड़ियां हैं किसान के पास, एक टंकी को दूसरी को जोतता है, दूसरी टंकी फिर उसको पहली को जोतता है। इस देश का नागरिक विधवा स्त्री के समान है, सारा काम उसने मुनीमों को सौंप दिया है, मुनीमशाही चल रही है और इस नौकरशाही को इतनी वो इतने कोसे खिलाता है, इतनी गालियां देता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जहां रोज मिनिस्टरों में झगड़े होते हों और जहां मिनिस्ट्री मंत्रिमंडल बदलते हों वहां आखिर ये सरकारी नौकरी तो परमानेंट है? यही तो ईंट की रीढ़ है जिसके भरोसे चल रहा है। लेकिन यह ईमानदार रह नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन इसको ईमानदार रहने नहीं देगा। हम जेल में थे तो सारे जेलर और सारे जेल के वार्डर हमारा काम करते थे, यानी अंग्रेज सरकार से बेईमानी करते थे और यह हमने उनको सिखाया कि यह देशभक्ति है। किराए से जो लड़के घूमते हैं रास्तों पर उनको किराए से लेकर जुलूस में शामिल किया, उनको कांच फोड़ना सिखाया, रेल की पटरियां उखाड़ना सिखाया। अब वही 20-25 साल के हो गए हैं तो जो पाठ हमने पढ़ाया उसका अमल कर रहे हैं। इस चित्र को कभी आपने देखा था, कभी समझने की कोशिश की? जब विनोबा कहता है कि राजनीति से कोई समस्या हल नहीं होने वाली है तो बहुत बेवकूफी की बात नहीं कहता। राजनीति यह है, अब कहां पहुंच गई है इसको भी देखिए। पार्टियों की राजनीति इस मुकाम पर पहुंच गई है कि एक दूसरे का भरोसा नहीं कर सकती। एक पार्टी दूसरी पार्टी का भरोसा नहीं कर सकती। ये हमारा लड़का सोमैया सुना रहा था कि कोई यहां शराबे की दुकान है तो दो भाइयों में झगड़ा हो गया, तो एक भाई लिखता है कि मुख्य दुकान यहाँ है और वो एक शाखा वहाँ है, दूसरा भाई वही लिखता है कि मुख्य दुकान यहाँ है और शाखा वहाँ है। जिस तरह से दुकानदारों की ये बात हो रही है, ये पार्टियों में भी यही पेटी फॉगिंग चिल्लर व्यापार चल रहा है, फुटकर व्यापार। अब उसमें कहते क्या है कि एक पार्टी से आदमी दूसरी पार्टी में न जाए, इसके लिए कानून बनाओ, यानी हमको ईमान कानून से सिखाओ। ये कभी हुआ है? गुड पीपल इज मेड ऑनेस्ट बाय लॉ। मैंने कहा ना कि ईश्वर के बाद सरकार का स्थान हमारे देश में है। पार्लियामेंट में कानून बन जाए तो क्या ये सब ईमानदार बन जाएंगे? इतना भी एक दूसरे का भरोसा जो नहीं कर सकते, यानी जो भरोसा चोर एक दूसरों का करते हैं, चोरों के दो गिरोहों को मिलकर अगर चोरी करनी हो तो एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। हमारे पॉलिटिक्स में तो उतनी भी ऑनेस्टी नहीं है, उतना भी ऑनर नहीं रह गया है, उतना भी ईमान नहीं रह गया है। अब इसकी कितनी वेदना हमको होनी चाहिए, लेकिन हम इसका मजाक उड़ाते हैं। अखबार वाले भी इसको मजाक की चीज समझते हैं और नागरिक भी समझता है मजाक की चीज है, लेकिन यह सारा खेल हमारे जीवन के साथ हो रहा है, ये खिलवाड़ हमारे जीवन के साथ कर रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि अब पार्टी गवर्नमेंट पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। विनोबा ने तो बहुत पहले कहा था कि राजनीति और धर्म के दिन लद गए, अध्यात्म और विज्ञान के दिन आए हैं। लेकिन जाने दीजिए विनोबा को, जेपी ने बहुत कोशिश की कि कोई नागरिक सामने आए जो पार्टी के नहीं है, कोई नहीं आ रहा। आखिर जो सरकार बनी उसमें जनसंघ का प्रभाव है, अब जनसंघ को गालियां देते हैं। जिसके पास शक्ति थी, जिसके पास संगठन था और जिसके पास उस संगठन के लिए एक तरह का अनुशासन था, उसके हाथ में अपने आप ही शक्ति जाएगी, सत्ता जाएगी। इनमें से किसके पास क्या है? ओल्ड कांग्रेस 3-13 हो, सोशलिस्ट पार्टी में लीडर ही लीडर है, फॉलोअर कोई है। चरण सिंह का वो हाल हो गया। अब इसमें क्या पार्टियों की ही सत्ता रहेगी? और अगर रहेगी तो यह खेल चलेगा। पूछते हैं फिर अल्टरनेटिव क्या है? जवाहरलाल से पूछा था कि तुम्हारा सक्सेसर कौन होगा, तुम अपने बाद किसी सक्सेसर का नाम बताकर जाओ। तो उसने कहा था और बहुत पते की बात कही थी कि कोई मैं राजा हूं, कि जो ये कहूंगा कि मेरे बाद ये राजा हो। ये प्राइम मिनिस्टर की गद्दी कोई मेरी है, मेरी बपौती है? ये लोगों की गद्दी है, लोगों ने मुझे बनाया, मेरा उत्तराधिकारी भी लोग बनाए, मैं कौन होता हूं कहने वाला? तो आज हम ये जवाब दे सकते हैं। ये जवाब तो रहा, डर रहे हैं कि इंदिरा आ जाएगी तो क्या होगा। अब ये 60 करोड़ लोगों का हाल है। ये याने हमारा भाग्य हमारे हाथ में है नहीं मित्रों, ये हमारे देश का मुख्य दोष है। इसके कारण ये देश अध्यात्म वगैरह सब कुछ होते हुए भी इतिहास में गुलाम ज्यादा रहा और आजाद कम रहा। क्या इस देश पर कभी किसी बड़े देश ने हमला किया है? इतिहास में कभी आपने सुना कि किसी बड़े देश ने इस पर हमला किया? सिकंदर आया ग्रीस, सुगुप्तगिन, महमूद गजनी, छोटे छोटे देशों से आए, हूम आए, ये सब टोलियां आई और ये देश के लोगों को आराम से लूट कर चले। मैं अपने से ये सवाल पूछता रहा हूं आज तक कि क्या अध्यात्म का गुलामी के साथ कोई रिश्ता है? क्या ये हमारी आध्यात्मिकता की शान है कि ये देश गुलाम ही रहे? ये उन लोगों का देश है जिन्होंने कर्म को भी दैव बना दिया, एक्शन को भी फेक बना दिया। ये क्यों हो रहा है? हमारे कर्मों का फल है भाई, कर्म तेरे हैं तो फिर फल किसका है? लेकिन कर्म मेरा है माना ही नहीं कभी। कर्म पहले का है कभी पुराने जीवन का जन्म का। क्या यह अध्यात्म है? ये कौन सा दर्शन है? हमेशा आलोचना की है कि पश्चिम के लोग सब भौतिक हैं और ये कौन सा अध्यात्म है? वो भौतिक है तो कम से कम ईमानदार हैं, हम आध्यात्मिक हैं और ढोंगी है दांडी। तो ये मौका है जब इसको सोचना चाहिए और अब बूढ़े आदमियों के यानी जयप्रकाश के सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। वो युवा शक्ति युवा शक्ति युवा शक्ति रखता है, युवा भी कहीं नहीं है, शक्ति भी कहीं नहीं, उपद्रव ही उपद्रव। कहीं प्रकट ही नहीं हो रही। इतने दंगे हुए कहीं युवा शक्ति दिखाई दी? गुंडों का उपद्रव हर जगह बढ़ रहा है, रेलवे ट्रेन में बढ़ रहा है, रास्तों पर बढ़ रहा है, बसेज में बढ़ रहा है, कहीं युवा शक्ति है? युवा शक्ति सिर्फ पुलिस के सामने खड़ा होना जानती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं जानती। वहां इंग्लैंड में एक बार हुआ था, मालूम है मुझे कैम्ब्रिज का है कि ऑक्सफोर्ड का है, लड़के गए धावा बोल दिया यूनिवर्सिटी को, पहले नोटिस दिया कि अब कन्फ्रंटेशन होगा। तो वो जो प्रेसिडेंट था कॉलेज का, उसने उनको चिट्ठी लिखी कि हम राह देख रहे हैं तुम्हारे धावे की, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो मिलिट्री में रह चुके हैं ऐसे इतने आदमी हैं, जो पुलिस में रह चुके हैं वो इतने आदमी हैं, बंदूक चलाने वाले इतने हैं और तलवार चलाने वाले इतने आदमी हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप लोग का बात करें। तो सब गायब, हवा हो, कोई आया नहीं। हरिद्वार से मैं जा रहा था, हम लोग मैं गोविंदराव वगैरह यहाँ दिल्ली, तो मेरठ के लड़के आए 15-16 साल के, वो सब स्त्रियाँ वगैरह बैठी हुई थी, वो बस तोड़ने लगे, हमसे हाथ जोड़ के कहने लगे उतर जाइए। अब ये गोविंदराव कहने लगा हम क्यों उतरेंगे? मैंने कहा तुम नहीं उतरोगे तो ये बच्चे मरेंगे ना, ये स्त्रियाँ क्या करेंगी, गर्भवती स्त्रियाँ यहाँ हैं। तो हम सब उतरे, उन्होंने वो बस तोड़ी हमारे सामने और दूर से किसी ने कहा कि पुलिस आ रही है तो वो आया हो गए, कहीं पता ही नहीं। अब ये इनके बहादुरी की कहानियां हैं जो रोज पढ़ता हूं। इसमें से अब कुछ नहीं होने वाला है, जितने मोर्चे निकलते हैं, जितनी कुछ आंदोलन होते हैं, केवल सरकार के विरोध में होते हैं। तो इंदिरा गई, मोरारजी भी जा सकता है, अमर होकर कोई नहीं आया है, लेकिन फिर क्या उसकी जगह आप लेंगे? कोई ये कहने को तैयार है ना कि मोरारजी जो नहीं कर सका वो मैं करूंगा? तो अकेली इंदिरा जी कहने के लिए तैयार है तो उसी पर मुकुट लगा जाएंगे, उसके सिर पर चढ़ा देंगे। मित्रों, ये बहुत वेदना के साथ मैं सब कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि कितने दिन तक कह सकूंगा, इसलिए बहुत मेरे चित्त में ये वेदना है कि मेरे नाती पोतों का क्या होने वाला है, वो कैसी स्थिति में रहने वाले हैं। तो एक बात इस देश की राजनीति में पक्की समझ लीजिए कि अब इस देश में जिस तरह की पार्टियां हैं, इस तरह की पार्टियों का शासन बिल्कुल नहीं चल सकता। वो हर वक्त सेना को बुलाएंगे और सेना एक दिन कहेगी कि हर रोज अगर हमको बुलाना है तो फिर तुम्हारी जरूरत ही क्या है? जरा जरा सी बात के लिए सेना के बिना काम ही नहीं चलता, सेना को ही बुलाना पड़ता है। जैसे ये स्मशान हो, इसमें कोई नागरिक है नहीं। दूसरी चीज जो पॉलिटिक्स आज जो दूसरा चल रहा है हमारे देश में, वो प्रेशर ग्रुप्स का पॉलिटिक्स। एक तो पार्टी पॉलिटिक्स है, दूसरा पॉलिटिक्स है प्रेशर ग्रुप्स का। अलग अलग सारे स्वार्थ संगठित होते हैं और संगठित होकर, छोटे छोटे स्वार्थ संगठित होकर सारे समाज को परास्त कर देते हैं। उस वक्त युवा शक्ति कहां जाती है? कितने आदमी होते हैं? इमरजेंसी के वक्त मालूम नहीं ये सब कहां गायब हो गए थे, भूमिगत हो गए। अब तो मालूम ऐसा मालूम होता है जैसे चींटियों की बामी खुल गई है, घेराव चलते हैं, हड़तालें चलती हैं, सब कुछ हो रहा है। यहां मुंबई में जब मैंने सुना कि विद्यार्थियों ने कब्जा ले कर लिया है यूनिवर्सिटी का, तो मुझे बड़ा सुख हुआ। मैं वाइस चांसलर होता तो सत्यनारायण की पूजा करा। ये दिन की तो राय देख रहा था कि तुम यूनिवर्सिटी का कब्जा ले लो और पढ़ो, ये पैसे हैं, ये इमारतें हैं, जो करना हो करो। लेकिन ये हिम्मत नहीं है बूढ़े आदमी में, माँ बाप में भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है, वाइस चांसलर में भी नहीं है। कोई नुकसान नहीं होगा, आज जितना हो रहा है उससे कमी हो, क्यों नहीं स्वागत किया? वहां जाकर पुलिस को ले गए ताले तोड़ने के लिए। हमारे राणी साहब आज मुझसे कह रहे थे कि कभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ कि परीक्षा का फल अब तक न निकला हो। मैं कहता हूं बहुत शुभ दिन आया, और ये दो एक साल न निकले। लेट देम फेस रियलिटी, वास्तविकता से उनका कुछ तो मुकाबला होने दो। जहां वास्तविकता सामने आई कि बीच में हम चले जाते हैं, मां बाप, सरकार और नेता, ये तीनों मिडिलमैन किसी काम के नहीं, उनको उलझने दो अपनी समस्याओं से, उसमें से युवा शक्ति पैदा होगी। युवकों का विश्वास करो, हम जितना हमने बिगाड़ा है उतना वो बिगाड़ नहीं सकेंगे, उनको फेस करने दो, ये हम करने नहीं दे रहे हैं। इसलिए प्रेशर ग्रुप्स का पॉलिटिक्स चलता है। विद्यार्थियों का एक मोर्चा निकला बाजार बंद, क्योंकि बाजार के सिवा कहीं है, विद्यार्थियों की यूनिवर्सिटी से मतलब ही नहीं है, बाजार से ही। मजदूरों को कारखाने से मतलब नहीं, बाजार से। तो ये सब मोर्चे निकालेंगे और बाजार बंद होता चला जाएगा, क्योंकि नागरिक भयभीत है और भयभीत रहेगा। ये कंस्ट्रक्टिव रेवोल्यूशन है मित्रों, जो नौजवानों को करना चाहिए। व्हाई शुड एनी प्रेशर ग्रुप बी एबल टू होल्ड द होल सोसाइटी एट रैंसम? ये क्यों होना चाहिए? इसका कारण है कि नागरिक कहीं है ही नहीं, जो है वो भयभीत। और जब तक प्रेशर ग्रुप्स रहेंगे, पॉलिटिक्स पार्टीज का रहेगा और पॉलिटिशियंस का रहेगा, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं हो सकता। इसका कारण, अगर स्वच्छ प्रशासन रहे तो पॉलिटिशियन जी नहीं सकता। मुझे अगर मेरे भाई भतीजे को नौकरी चाहिए या एडमिशन चाहिए या और कुछ सहूलियत चाहिए, तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में मैं करा सकूं? एडमिनिस्ट्रेशन इनएफिशिएंट रहे और करप्ट रहे, ये सुप्रीम नेसेसिटी है पॉलिटिक्स। वो कभी क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन होने ही नहीं देगा। अब हम सभी चिल्लाते हैं करप्शन बहुत है, करप्शन बहुत है। सबसे ज्यादा तो ये विद्यार्थी चिल्लाता है जो परीक्षा में भी चोरी करता है और सोशल गैदरिंग में भी चोरी करता है, वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है। ये जेपी के आंदोलन से वगैरह करप्शन का अंत नहीं होने वाला है, उसके लिए जड़ में जाना होगा, गहराई में उतरना होगा और खतरे उठाने होंगे, गुंडों का मुकाबला करना होगा और पॉलिटिशियन का भी मुकाबला करना होगा, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन का, जो कोई नहीं कर पा रहा है। अब सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी है, उसमें क्या कौन कौन है? छगला साहब हैं, अभी उनसे बुरा मिला नहीं होगा कोई ज्यादा, इसलिए वो हैं, नहीं तो और भी सीनियर कोई होता है। और सब दूसरे हैं, कितने आदमी उसमें हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश के नागरिक को फ्रीडम में इंटरेस्ट नहीं। He is in love with security and not freedom. और security हमेशा protected होती है, guarded होती है। We have always shunned freedom. तो ये दूसरा politics है। तीसरी राजनीति हमारे देश में संख्या की राजनीति, जिसकी संख्या अधिक उसकी राजनीति। डेमोक्रेसी संख्या की क्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी संख्याशाही नहीं है, मत की है। आज जो अल्पमत है वो कल बहुमत हो सकता है, और आज का बहुमत कल अल्पमत हो सकता है, ये लोकतंत्र है। संख्या का राज्य लोक राज्य नहीं है। लेकिन यहां क्यों हुआ? आप थोड़े हैं और समझ सकते हैं, इसलिए थोड़े हो हैं, इसीलिए मैं इस चीज को इस तरह से रख रहा हूं कि हम सब इसका अध्ययन कर सकें। इसको एक अध्ययन के रूप में मैं आज रख रहा हूं, आप लोगों का दिल बहलाने की कोई बात नहीं कह रहा हूं। मत और संख्या में सबसे बड़ा फर्क यह है कि संख्या बदलती नहीं, मत बदलता है। मत बदलता है, ये डेमोक्रेसी के प्लिंथ एंड फाउंडेशन, ये नींव है लोकतंत्र कि मत बदल सकता है। अपोजिशन गवर्नमेंट बन सकता है और गवर्नमेंट अपोजिशन में जा सकती है। संख्या में यह नहीं होता, लेकिन हमारे देश में संख्या का प्रश्न क्यों आया? मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले समाज पर माइनॉरिटी डोमिनेट करती रही, अल्पसंख्या का वर्चस्व रहा, कहीं ब्राह्मणों का, कहीं कायस्थों का, कहीं वैद्यों का, अल्पसंख्यकों का वर्चस्व बहुसंख्या पर रहा। इसलिए इन अल्पसंख्यकों को अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता की खोज करनी थी। अंग्रेजों के जाने के बाद वो खोज शुरू हुई। डीएमके का आंदोलन हुआ, ब्राह्मणेतर आंदोलन हुआ, इन सब का मैंने स्वागत किया, इसलिए किया कि इसमें अस्मिता की खोज थी। जिनकी अस्मिता खो गई थी वो अपनी अस्मिता की खोज कर रहे थे, इसलिए मैंने प्रगति के अनुकूल आंदोलन को माना, और वो थे भी उसमें। अंग्रेजी राज में अंग्रेजी भाषा की प्रतिष्ठा थी, इसलिए अन्य भाषाओं का की अप्रतिष्ठा हुई, उन भाषाओं का दमन हुआ, तो भाषिक अस्मिता भी उभरने लगी। लेकिन इस अस्मिता की एक सीमा होती, वो सीमा हमने कभी पहचानी नहीं। इसका कारण राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता, ये दो चीजें हमारे जीवन में थी ही, व्यक्ति और कुटुंब दो ही हमने पहचाने, व्यक्तिगत स्वार्थ और कौटुंबिक स्वार्थ, समाज निष्ठा हमारे देश में कभी रही नहीं। ये बहुत, मैं सब साहस के की बातें कह रहा हूं, लेकिन बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। समाज निष्ठा न रहने के कारण कुटुंब तक हमारी सारी निष्ठा सीमित रही और चारित्र व्यक्ति तक सीमित रहा। इस देश में गौरी शंकर के बराबर ऊंचे व्यक्ति हुए, लेकिन सामान्य जीवन का स्तर कभी उठ नहीं सका ऊंचा नैतिकता की दृष्टि से, ईमान की दृष्टि से कभी उठा ही नहीं। इसलिए भाषिक मैं तो विरोध ही करता रहा, लेकिन यह माना मैंने कि ठीक है, कुछ दिन तक यह भाषिक अस्मिता भी चलेगी, लेकिन आज हम कहां पहुंचे हैं? सांप्रदायिक अस्मिता की खोज की परिणति पाकिस्तान में, जातिस्तान तो पहले से थे ही, हर शहर में और हर गांव में, ये तेलियों का मोहल्ला है, ये मालियों का मोहल्ला है, ब्राह्मणों का मोहल्ला है, और बाहर सब अछूत है। जाति स्थान तो हमारे देश में हमेशा रहे, इसलिए जब जब हम गांधी वाले गांव की बात करते थे तो अम्बेडकर बहुत चिढ़ कर हमसे कहते थे, ये गांव की बात करते हो, जिस गांव में मुझे कोई स्थान नहीं है, जिस गांव में किसी मोहल्ले में मैं रह नहीं सकता हूं, उस गांव की बात कर रहे हो। वो हमेशा ये सवाल हमसे करते थे, क्या इसका जवाब हमारे पास कोई है? जातिस्तान पहले थे, पाकिस्तान अब बना, और अब हिंदुस्तान तो बनने वाला नहीं है, भाषिस्तान बने। तो क्या कम से कम यह हो सकता है कि सारे देश की सारी भाषाओं की एक लिपि हो या दो लिपियां हो? किसी तरफ तो कदम बढ़ाएं। शिक्षण और संस्कृति की बात होती है, उसमें मीडियम की बात सबसे महत्व की है। जाने दीजिए, आज अगर माध्यम की बात आप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम भाषा और लिपि में तो भेद कीजिए। रोमन में मेरा नाम लिखा गया तो क्या अंग्रेजी हो गई, और नागरी में लिखा गया तो क्या हिंदी हो गई? और लॉयड जॉर्ज का नाम लिखा गया नागरी में तो क्या वो हिंदू हो गया? और रोमन में लिखा गया तो क्रिश्चियन हो गया? और इन सारे आंदोलनों के नेता विद्यार्थी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं। अब हद हो गई, कहां यह देश पहुंचेगा? हर एक प्रांत में कम से कम 25 स्कूल ऐसे होने चाहिए जिसमें कॉमन मीडियम, स्कूल और कॉलेज, सारे देश के लड़के लड़कियां उनमें आकर पढ़ सके, और एक लिपि न हो सके तो रोमन और नागरी चले, लेकिन इतनी लिपियां क्यों चले? भाषिस्तान में से आप पूरा उसका ध्यान रखिए, लिंग्विज्म विल एंड इन मल्टीनेशनलिज्म विच इज हैपनिंग टुडे। गोदावरी के पानी का झगड़ा है, नर्मदा के पानी का झगड़ा है, कावेरी के पानी का झगड़ा है, अब गंगा यमुना के पानी का झगड़ा रह गया है, वो भी जल्दी होगा। और फिर यहाँ का आदमी वहां गंगा जी में नहा सकेगा कि नहीं? पंडे को दक्षिणा मिलेगी तो नहा सके, नहीं तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा। इस तरफ को ये देश जा रहा है। मैं बहुत साफ ये सब कहता हूं, दो आदमी हो तब भी कहता हूं। इसका कारण यह है कि द आयरन हैज एंटर्ड माय सोल। मुझे
मंत्र मेरे देश में गांधी बढ़ा, मुक्ति काले मंत्र मेरे देश में गांधी बढ़ा, सत्य का संग्राम सबने त्याग के बल पर लड़ा, क्रांति की ज्वाला कभी, क्रांति की ज्वाला कभी बुझती नहीं फुफकार से, हम तरुण हैं हिंद के, हम खेलते अंगार से, लड़ते नहीं हथियार से, डरते नहीं तलवार से, हम जीतते हैं प्यार से, हम तरुण हैं हिंद के। किरण की जलती मशालें और चंदा का दिया, किरण की जलती मशालें और चंदा का दिया, भाल विस्फित है गगन सा और धरती साहिया, प्रेम का पंथी कभी, प्रेम का पंथी,
उनको लेकर विवेचन करूंगा। एक सवाल ये पूछा गया है कि आज का जो शिक्षण है ये कैसे बदले। मैं उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोई इस शिक्षण को बदलना चाहता है? क्या सचमुच कोई बदलना चाहता है? और अगर बदलना चाहता है तो इतने हजारों लड़के कैसे चले जाते हैं इन संस्थाओं में? कहां से आते हैं? आसमान से आते हैं? जगह नहीं रहती किसी भी कॉलेज और स्कूल में, और हरेक वहां ये कहते हुए जाता है कि शिक्षण बहुत रद्दी है या नहीं चाहिए। मोर्चे हो रहे हैं भोपाल और दूसरी जगह की एक नई यूनिवर्सिटी चाहिए। एक दफा वो लड़के मेरे पास आए, उनके नेता, कि हम ऐसी मांग कर रहे हैं। मैं कहा जरूर करो, तुमको एक खिलौना है चाहिए, एक जलाने के लिए, तोड़ने के लिए एक और चाहिए, तो बना लो। इस देश का नौजवान अगर सचमुच ये मानता है कि ये शिक्षण ठीक नहीं है, तो पहला काम उसे यह करना चाहिए कि उसका बहिष्कार करना चाहिए। परीक्षाओं का बहिष्कार नहीं।
जो बहुसंख्यक थे असल में, उनको अब किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं रही। सत्ता उनके हाथ में, संपत्ति पर भी उनका प्रभाव बहुत है। आज इस देश की राजनीति बड़े किसानों के हाथ में है, और ये छोटे किसान का प्रवेश तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में होने नहीं देगा। अब इस हालत में ये ब्राह्मणेतर आंदोलन, ये डीएमके, दे हैव आउटलिव्ड देयर डे। ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान था लेकिन कमजोर था, मैदान से उसको हटना पड़ा। इनके पास संख्या भी है, साधन भी है, अब इनको मैदान में संरक्षण की क्या आवश्यकता है? अब आवश्यकता किनको है? ये अछूत है या आदिवासी? आप अपने से पूछिए, मैं अपने से पूछता रहा हूं कि यह चमार भंगी ढेड़ मांग, यह हिंदू समाज में अपनी अस्मिता कहां खोजे? मुझे मतलब इन ऋषि मुनियों की संस्कृति में और धर्म में उनका स्थान कहां है? आंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। इसका कारण था कि वहां लिखा हुआ है कि शूद्रों के लिए करना यह होना चाहिए और अछूतों के लिए यह होना चाहिए, जो मनुष्यता का अपमान करने वाली चीजें हैं। इसलिए ये अछूत, क्योंकि ये जो दूसरे आदिवासी हैं इनकी तो भिन्न संस्कृति भी हो सकती है, आप कहेंगे कि इनकी अलग संस्कृति भी है, लेकिन इस अछूत की कौन सी भिन्न संस्कृति? वो कहां जाए? वो तो नव बौद्ध होने के बाद भी अछूते ही रहता है, कहां वो अपनी अस्मिता को खोजे। तो उसमें अपनी संभावनाओं का प्रतीक, सारी संभावनाओं का प्रतीक, पोटेंशियलिटीज का प्रतीक आंबेडकर को माना कि ये हम में जितनी संभावनाएं हैं, सुप्त शक्तियां हैं, इनका विकास अगर हो सके तो यह ऐसा आदमी हम में से पैदा हो सकता है। लेकिन उनका कदम आगे नहीं बढ़ सकता, इसका कारण है संख्या उनकी कम है और साधन उनके पास नहीं। साधन संपन्नता का अभाव और संख्या का भी अभाव, इन अछूतों के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दबाव समाज पर पड़ सके। इसलिए इनकी अस्मिता की खोज की खोज का हमको स्वागत करना चाहिए। ये कहीं तो अपनी अस्मिता खोजें, इसका स्वागत हमको करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि अंग्रेजों के से पहले जो बहुसंख्यक लोग इस देश के सवर्ण लोग दलित थे, दबे हुए थे, वो अब आगे आ गए हैं। और जो जो अस्पृश्य अछूतों में जागृति आएगी क्यों तो इनका विरोध बढ़ेगा, क्योंकि वो अपना इनको प्रतिस्पर्धी मानने लगे। अब ये जो राजनीति है, इस राजनीति में बहुत बड़ा दोष यह है कि ये जो अछूत है ये हिंदू समाज का अंग है, इसको और कहीं जगह नहीं है, इसकी कोई भिन्न संस्कृति नहीं है, आदिवासी की तो है भी। तो इसकी अस्मिता की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हिंदू समाज में होगी तभी यह सवाल हल होगा, अन्यथा नहीं। तो साने गुरु जी बहुत बड़े थे, उन्होंने एक बात कही थी, लेकिन मैंने भी वही बात स्वतंत्र रूप से कही थी, अलग कही थी। ब्राह्मणों से कहा था कि अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो सरकारी नौकरियों का बड़ा बहिष्कार कर दो और सरकारी कॉलेज और स्कूलों का भी बहिष्कार कर दो। तो इस देश में तुम गुणवत्ता के जोर पर जी सकोगे। लेकिन ब्राह्मण में अति बुद्धि होने के कारण उसे मेरी ये बात मानी नहीं और अब धक्के मार कर उसको निकाल दिया। इन बहुसंख्यक लोगों को कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन इनके चित्त में अगर लोग निष्ठा हो, और वो है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव कानून तो उसी पार्लियामेंट में हुआ जहां सवर्णों का बहुमत है, तो सवर्णों में भी मनुष्यता की चिंगारी है। उस भगवान के अंश से मैं अपील करता हूं कि सरकारी नौकरियों में और सरकारी स्कूल कॉलेजों में इनको जाने दो, क्योंकि इनकी बाबू बनने की आकांक्षा है। तुम बाबू बन चुके हो, अब तुम बाबूगिरी छोड़ो और इनको बाबू कुछ दिन बनने दो। मैं ये जानता हूं कि मैं ये सुझा रहा हूं सोल्यूशन हल, ये कोई मानने वाला नहीं है, लेकिन कह देना आवश्यक। जैसे उस वक्त मैंने ब्राह्मणों से कहा था, ऐसे आज सवर्णों से कह रहा हूं कि इन अछूतों की अस्मिता का स्वागत करना चाहिए, अस्मिता की खोज का उनकी सहायता करनी चाहिए और उनको अपना प्रतिस्पर्धी नहीं मानना चाहिए, दावेदार नहीं मानना चाहिए। इसके सिवा अब नेशनल इंटीग्रेशन हो नहीं सकेगा। अब इतना जो मैंने वर्णन किया राजनीति का, इस परिस्थिति से लाभ हर अपोजिशन उठाता है। जब ये जनता वाले अपोजिशन में थे तब भी वो इस परिस्थिति से लाभ उठाते थे, आज इंदिरा जी उठा रही, अब ये उठाते थे तब वो बहुत सद्गुण था और अब ये इंदिरा जी कर रही है इसलिए दुर्गुण हो गया, ये कैसे कहा जा सकता है? ये तो पैतरेबाजी है राजनीति में। जिस पैतरेबाजी से हर अपोजिशन ने अब तक काम लिया उससे अब कांग्रेस ले रही है, इसमें शिकायत करने से काम नहीं चलेगा, कुछ पॉजिटिव रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है, भाव रूप विधायक क्रांति की आवश्यकता है, मोर्चे की भी आवश्यकता है, लेकिन मोर्चा अब कहाँ लेना है? संख्यावाद से, जातिवाद से, भाषावाद से, संप्रदायवाद से, ये मोर्चे हैं, ये आपके लिए कितने मोर्चे खुले हुए हैं, लेकिन क्या कहूँ, ये नौजवान की कोई हिम्मत ही नहीं है इन मोर्चों पर जाने की। एक मोर्चा यहाँ सेफ है और आसान है, वो है सरकारी मोर्चा, और उसमें चीप पॉपुलैरिटी भी है, लोकप्रियता जल्दी मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मिलती थी जब जेल में थोड़े से लोग जाते थे, अब तो रोज कोई ना कोई जेल में जाता है, तो कुछ दिनों में इसका महत्व कम हो जाएगा, अब कोई उसकी बहुत कीमत नहीं रहने वाली है। तो मित्रों, मैं आपका अधिक समय नहीं लेने वाला हूँ, इस संपूर्ण क्रांति की व्याख्या मैं करता रहा हूँ, और इसकी व्याख्या करने में मैंने यह कहा है कि जब तक लोकतंत्र रहेगा तब तक राजनीति से कोई नागरिक अलग नहीं रह सकता, लेकिन राजनीति प्रेशर ग्रुप्स की नहीं, राजनीति पार्टी की नहीं, राजनीति पावर की नहीं, राजनीति ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और राजनीति ऑफ सिटीजन, राज नागरिक और राष्ट्रीयता की राजनीति की आज आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा विधायक कार्य है, बहुत बड़ी चुनौती है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप खूब याद रखिए, इस देश में हर तरह की अराजकता आ सकती है, और अराजकता कोई दीर्घ काल तक सह नहीं सकता। अराजकता के कारण ही अंग्रेजों का इस देश में स्वागत हुआ, और अब तो लोग जहां जाता हूं वहां यह भी कहने लगे हैं कि हमारे जो देशी राजा थे वो इस सरकार से अच्छे। वो देशी राजा कैसे थे? मैं उनकी राजधानी में रास्ते से चलता था तो लोग कहते थे कि टोपी और जूता उतारो तो सवारी आ रही। लेकिन इस देश के आदमी को इसका कभी रहा ही नहीं, चाहे हमारी इज्जत ले लो लेकिन संरक्षण करो। ये हमारे देश की स्त्री की भूमिका रही है कि लड़के मुझसे भाषण कराने वाले भारतीय स्त्री पर तो मैं ज्यादा कहूँगा, लेकिन इस देश की स्त्री की ये भूमिका रही कि रोज पीटो दो लाते मारो लेकिन रक्षण करो। वो हमारे सारे नागरिकों की भूमिका है। इससे अधिक इस अवसर पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आज आप थोड़े से जाने पहचाने हुए लोग यहाँ इकट्ठे हुए और मेरे चित्त की जो वेदना थी वो आपके साथ शेयर कर लूँ, आपको उसमें सहभागी करूँ, ऐसी इच्छा हुई। अब आप और मैं सब मिलकर भगवान से ये प्रार्थना करें कि जेपी को बहुत दिन तक बचाएं और उनको चंगा रहने दें। किस लिए? इस देश का तरुण और तरुणी सक्रिय होकर विधायक क्रांति में जुट गई हैं ये देखने के लिए।